आपने मुझसे? आपने कहा था कि उर्वी ठीक है।
तो मैं क्या करता दामिनी, मैं क्या करता? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसको
उर्वी के बारे में सोचिए, वो बेचारी वहां और हम, बजाय उसके लिए कुछ करने के सब झूठ बोल रहे हैं, और आपने मुझसे भी झूठ बुलवाया।
हाँ झूठ बुलवाया, क्योंकि तुम्हारे एक सच से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो दामिनी, इस बात को हमको दबाना पड़ेगा।
क्या?
हाँ, राकेश मेरा भाई है, भाई बात घर की है, कैसे हम पुलिस के हवाले कर दें उसको यार।
देखिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सच बोलने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। हम अभी चल के उससे मिलते हैं, माँ जी को भी साथ ले जाएंगे, बड़ा सहारा होगा उसके लिए। हमें देखकर जान आ जाएगी उर्मी में, क्यों नहीं जा सकते? मैं जाना चाहती हूँ, मैं मिलूंगी उर्मी से। ले चलो ना मुझे, ले चलो।
बिल्कुल सही वक्त पे बलात्कार हुआ है, अब मैं गुप्ता खानदान की इज्जत का बलात्कार करूंगा। शुरू तो अब होगा इज्जत का खेल।
गुप्ता जी, ये तो दुनिया जानती है कि बैरिस्टर चड्ढा के पास जब कोई केस आता है ना, तो उस केस की तारीख बाद में मुकर्रर होती है, उसका फैसला पहले हो जाता है हमारे हक में।
लेकिन बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है।
जब भी चाहे पुलिस घर में आ धमकती है।
छोकरों ने जो किया वो कोई बड़ी गलती नहीं है, जवानी में तो ये सब होता ही रहता है। सभी करते हैं, ना समझी तो ये हुई कि अगर उन्हें ये सब कुछ करना ही था तो भाई पहले मुझसे सलाह मशवरा कर लेते। खैर, आगे के लिए ख्याल रखें।
चड्ढा साहब, इस वक्त हमें करना क्या है?
गुप्ता जी, इस वक्त तो बाजी में पिछे हुए सभी मोरे मैं समझ गया हूं। मैं तो ये भी समझ गया हूं कि इस बाजी में आपका बेटा शेखर और बहू, ये दोनों बहुत कमजोर मोरे हैं, खास तौर पर बहू, क्या नाम है उसका, दामिनी, बहुत जज्बाती है और उसकी ये कमजोरी पुलिस बहुत जल्द सूंघ लेगी और उसके पीछे इस बुरी तरह से पड़ जाएगी जैसे हड्डी के पीछे कुत्ता पड़ा होता है। इसलिए उसे आप शहर से बहुत जल्द बाहर निकाल दीजिए।
क्या कह रहे हैं आप? अरे दामिनी मेरी बहू है और मेरा बेटा शेखर से बहुत चाहता है।
गुप्ता जी, प्यार, दोस्ती, जज्बात, रिश्ते, ये सब बहुत हल्की और कमजोर बातें हैं, बनी बनाई बाजी को बिगाड़ देती हैं। इनकी बीमारी लगी तो समझो शिकस्त हुई, और मैं इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता, तबाह करके रख दूंगा सब कुछ लेकिन शिकस्त नहीं खाऊंगा।
पुलिस भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अरे रिश्वत तो दूर, बात करने को तैयार नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। सुमित्रा, इससे पहले पुलिस दामिनी से कुछ उगलवा ले तुम उसे यहाँ से दूर भेज।
वो जाए तब ना, वो तो एक ही रट लगाए बैठी है, उर्मी से मिलना है, उर्मी से मिलना है। एक शेखर ही है जिसने उसे रोक रखा है। चार दिन हो गए हादसे को, वो कमबख्त उर्मी वहाँ हॉस्पिटल में मर नहीं रही और ये दामिनी हमें यहाँ जीने नहीं दे रही। अच्छा होता कि उसे रेल की पटरी पे फेंक आते।
प्लीज, देखो जैसे भी हो दामिनी को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उर्मी ठीक हो गई है और अपने दादा के साथ गांव चली गई है। किसी भी तरह दामिनी को शेखर के साथ दिल्ली भेज दो।
नमस्ते दामिनी जी। इंस्पेक्टर कदम, कई बार आपसे मिलने की कोशिश की लेकिन आपके घर वालों ने मिलने नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि आज
अगर मेरे घर वाले चाहते हैं कि आप मुझसे ना मिलें, आपको इस तरह मुझसे बात नहीं करनी चाहिए।
हो सकता है कि आपके लौटने तक उर्मी इस दुनिया में न रहे, वो मर रही है, अस्पताल में है। ये देखिए, उर्मी की हालत बहुत खराब है, अंदर की कोई नस फट जाने से उसका लगातार खून बह रहा है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, उसे आपका इंतजार है, शायद अब उसे एक अपाहिज की जिंदगी जीना पड़े, वो मर भी सकती है। देखिए
क्या
बता
देखा,
मैं तेरे पैसे की अकल निकाल के रहूंगा, क्या समझता है तू?
पुलिस वाला तो कुछ भी कर सकता है क्या तू?
पुलिस पे हाथ उठाता है,
अरे शराब एक कोई तरीका है, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है। अरे कभी घर में, अभी एयरपोर्ट पे, पुलिस है तो
साला इंस्पेक्टर जाने क्या चढ़बड़ कर बता दिया तुमको,
बस जिद लेकर बैठ गयो कि अस्पताल जाना है, हम नहीं जाएंगे अस्पताल, नहीं जा सकते।
चड्डा साहब ने बताया कि घर के किसी भी आदमी को अस्पताल नहीं जाना चाहिए, ना जाने क्या केस पुलिस बना देगी और तुम हो गए बस। देखो दामिनी, मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है, शाम की फ्लाइट मिस कर चुका हूं, लास्ट फ्लाइट मिस नहीं कर सकता, चलो उठो अभी, लेट्स गो।
मैं नहीं जाऊंगी।
तो जाओ अस्पताल, मिलो उर्मी से, वही सब कुछ है तुम्हारे लिए, हम तो कुछ भी नहीं है, ये घर, हमारी इज्जत, ये सब तो कुछ भी नहीं है, बता दो पुलिस को सब कुछ, तबाह कर दो, खड़ा कर दो तमाशा, मिल जाएगा तुम्हें सुकून, चला दो मेरे भाई को फांसी पे।
मैं ये कहा चाहती हूं, मैं तो हम एक बार, सिर्फ एक बार उर्मी से मिल लेते हैं, अगर वो ठीक है, उसका इलाज ठीक से चल रहा है, तसली हो जाए।
तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या लगता हम उर्मी के दुश्मन हैं? हम सब जानवर हैं, पत्थर हैं। अरे भाई जो कुछ करना है वो कर रहे हैं, हो रहा है। बाबूजी भी कल कह रहे थे कि जो पैसे चाहिए लाख दो लाख दे दो लड़की के घर वालों को, लेकिन बात दवा दो और कुछ नहीं, इसे घर की इज्जत पे धब्बा भी नहीं लगेगा और फिर
क्या? आप उस लड़की की कीमत लगा रहे हैं क्या? पैसों से उर्मी का वो सब कुछ लौट आएगा जो उसे छिन गया है? जिन लोगों के विचार इस तरह के हो सकते हैं, वो तो अपनी इज्जत की खातिर किसी की जान भी ले सकते हैं, किसी की भी। हो सकता है कल मुझे भी।
बीबी जी, उर्मी,
नहीं।
बीबी जी, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? बीबी जी, कोई भी नहीं आया बीबी जी, कौन भी नहीं आया।
तुम्हारे दादाजी आए नहीं? तुम अकेली हो?
पता नहीं कौन बताया कि नहीं।
मैं खबर कर दूंगी उर्मी, तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी।
नहीं उर्मी, तुम ठीक हो जाओगी।
नहीं
नहीं उर्मी, ऐसा नहीं कहते।
देखो बेबी जी, मेरा खून भी नहीं रुकता।
आपने बयान देने का फैसला करके पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है,
मगर आप लोग उर्मी के लिए क्या कर रहे हैं? उसे सड़क से उठाकर अस्पताल में रख दिया तो ड्यूटी खत्म हो गई पुलिस की।
दामिनी जी, कल आप अपने स्टेटमेंट से कहीं मुकर तो नहीं जाएंगी?
जी,
मेरे पूछने का मतलब है कि फिलहाल आपके पति यहाँ है नहीं, उनके आ जाने के बाद कहीं दबाव में आकर आप।
जी नहीं, ये सच मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। देखिए, मेरे ये बयान देने से मेरे पति सास ससुर पर कोई बात तो नहीं आएगी ना, क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं।
देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, आप बिना किसी डर के स्टेटमेंट दीजिए, जाइए। इंस्पेक्टर कदम।
बोलो कदम।
हेलो सर, अच्छा हुआ आपका फोन आ गया,
दामिनी बयान दे रही है।
गुड न्यूज, हमारा केस अब स्ट्रांग हो गया है।
हाँ सर, यही सब कुछ लिखवा रही है, मैंने उसे पूरी तरह से शीशे में उतार लिया है।
वेरी गुड, जस्ट अ मिनट बजाज साहब,
हमने दामिनी से सच उगलवा लिया है। गुप्ता 3 लाख रुपए दे रहा है केस दबाने के लिए।
गुप्ता जो भी रकम दे रहा है केस दबाने के लिए, उससे 1 लाख रुपया ज्यादा मुझसे ले लीजिए केस उछालने के लिए।
चल बड़े बाप का बेटा ना तू, अरे मेरी मेरी बात सुन। चल
देखिए मेरे पति के आते ही वर्दी उतर जाएगी आपकी, देख लेना।
अरे अभी फोन करता हूँ।
तुमको जहाँ फोन करना है कर लो। दामिनी के बयान पे ये वारंट इशू हुआ है, जो करना है कर लो।
दीदी दामिनी,
दामिनी नीचे आ,
नीचे आओ।
जहर उगलाई ना पुलिस स्टेशन जाके, चैन मिल गया तुझे। न जाने कौन सी घड़ी शेखर ने देखा तुझे, सब तबाह हो गया। अब निकल जाए इस घर से।
मैं जानती थी कि अब मुझे इस घर में, वैसे मैंने इस घर की सुख शांति के लिए जो ठीक समझा वही किया।
औरत तो मर्द के पैर की जूती है।
हा?
और ये छोकरी रसोई घर से बाहर निकलकर मर्दों को ललकार रही है। मैं दामिनी को दूसरी औरतों के लिए कभी भी मिसाल नहीं बनने दूंगा, पागलखाने भेज दूंगा उसे।
ये रिवाज किसने बनाया बाबूजी, कि लड़की का असली घर उसके पति का होता है, बाप का नहीं?
हमारा ये मतलब नहीं है बेटी।
लड़की पराई क्यों होती है, उसे पराया धन क्यों कहा जाता है? अगर किसी भी वजह से उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़े तो कौन है उसका, कहां जाएगी वो, क्या वो खुदकुशी कर ले?
देखिए घबराइए मत, आपका फोटो टीवी पर आएगा। आपके साथ क्या हुआ है ये सबको पता चलना चाहिए ना। नरेश जूम इन टू द फेस, ये चेहरे का दाग दिखना चाहिए।
ये क्या हो रहा है?
अरे देखिए जब कई लोगों ने आपके साथ बलात्कार किया तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको?
ये क्या बेहुदा सवाल कर रही हैं
आप? कौन है बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं? आप पीछे आइए,
अपना काम करने दीजिए। नरेश मुझे ये दाग चाहिए।
अरे इनको हटाओ यार, लाइट आएगी जब तो दाग दिखेगा।
क्या कर रहे हैं आप लोग?
आप इनकी रिश्तेदार है क्या?
मैं दामिनी।
दामिनी, दामिनी गुप्ता।
दामिनी गुप्ता, ए दामिनी गुप्ता,
दामिनी, दामिनी गुप्ता,
दामिनी जी।
नरेश कैमरा यहाँ पैन करो। हेलो, आई एम रीता उपाध्याय फ्रॉम नेटवर्क। हमारी वीडियो मैगजीन तो देखती ही होंगी आप। हमारे साथ आज दामिनी गुप्ता है, केदारनाथ गुप्ता की बहू।
अरे ये बुड्ढा कहाँ से आ गया, हटा उसको।
दादा दादा, लड़की के दादा है।
दादा
हाजी।
अरे तो बैठा 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 दो, बैठा दो, हाँ बैठा दो।
ठीक है,
ठीक है जी।
नहीं नहीं नहीं, खड़ा करो खड़ा करो खड़ा करो खड़ा करो। अरे बैकलाइट देना, बैकलाइट।
बलात्कार के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं?
ये क्या तमाशा है?
दामिनी जी, नारी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत आप में कैसे आई?
ये बाद में बताएंगी। नरेश दादाजी से दामिनी जी पर पैन करना, और दामिनी जी चेहरे पर जरा सा गुस्सा और थोड़ा सा दुख ले आइए।
दामिनी जी साड़ी का बॉर्डर जरा ठीक नहीं लग रहा, कोई दूसरी साड़ी का इंतजाम हो सकता है?
जाने दो,
इसको जरा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ।
शर्म नहीं आती आप लोगों को, किसी की बर्बादी का तमाशा बनाकर बेचना चाहते हैं? इस मासूम की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही आपको? मेरी साड़ी का बॉर्डर नजर आ रहा है।
वो
क्या जानना चाहते हैं आप? क्या देखना चाहते हैं? देखिए, क्यों नाक क्यों सिकुड़ गई? सच्चाई लिखने और छापने का शौक रखते हैं आप, देख नहीं सकते। देखने के लिए रुमाल चाहिए, चाहिए, चले जाइए।
देखिए हम लोग
चले जाइए।
दामिनी घर छोड़कर चले गए, आप लोगों ने बात में से छुपाया की? मैं दिल्ली से जब भी फोन करता आप लोग
क्या करते बेटे? वहां तुम्हें बिजनेस की इतनी परेशानियां थी और उसके ऊपर
बिजनेस के अलावा भी जिंदगी है पिताजी। दामिनी जज्बाती जरूर है लेकिन लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है।
वाह बेटे, 4 दिन में उसने अच्छा रंग चढ़ाया तुम पर अपना। तुम्हें उसके घर छोड़ने का दुख है लेकिन तुम्हारे अपने भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई उसका कुछ नहीं
है। मां राकेश, मां दामिनी भी तो इस बाबूजी, बाबूजी आप तो कुछ।
बेटे तुम थक गए होगे, आराम करो।
हमने बचपन से कितने दुख उठाए हैं माँ, और बाबूजी हमारी शादी को लेकर कितने परेशान रहे हैं, क्या
क्या नहीं सहा, और आज जब तेरे पास सब कुछ है,
मैं कुछ नहीं भूली। मैं सब समझती हूँ। आज उस घर में एक मासूम की जिंदगी तबाह हो गई और सब लोग चुप हैं, और वो चाहते हैं कि मैं भी चुप रहूं। मैं चुप नहीं रह सकती दीदी, अगर मैं चुप रह जाऊं तो क्या मैं भी उस पाप में हिस्सेदार नहीं बन जाऊंगी?
नहीं नहीं छोटी,
दामिनी, प्यार तो वो वरदान है जो किस्मत वालों को मिलता है। तुझे मिला है, उसे ठुकरा मत। शेखर तुझे पलकों पर बिठाता है और तू उसे छोड़कर चली आई। क्या प्यार से बढ़कर भी कुछ है?
आप दीदी? अरे आप आइए आइए।
नमस्ते।
नमस्ते। आप दिल्ली से कब आए?
परसों।
मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, बैठिए ना।
ठीक है।
आपके लिए ठंडा भेजूं?
नहीं थैंक यू।
बैठिए ना, मैं चाय बना दूं?
ये तुमने ठीक नहीं किया दामिनी। इस तरह घर छोड़कर चले आना, पुलिस में घर वालों के खिलाफ बोलना, ये सब।
मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ सच कहा।
अरे भाग में गए तुम्हारे ये सच, ये पुलिस प्रेस और वो लोग जो तुमसे हमदर्दी जता रहे, उन्हें ना तुम्हारी सच्चाई से मतलब है और ना ही उर्मी की जिंदगी से। वो लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, बस दैट्स इट। तुम्हें मोहरा बनाकर हमसे फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग। ये बड़े लोगों की पॉलिटिक्स है दामिनी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? दामिनी, उनकी साजिश का शिकार तुम्हें बनाया जा रहा है। ये खेल हर कोई अपने मतलब के लिए खेल रहा है।
मैं ये खेल नहीं समझती, मैं सिर्फ उर्मी के लिए इंसाफ चाहती हूँ।
कौन सा इंसाफ? अबे किस किस से इंसाफ? कुछ नहीं होगा दामिनी, कुछ नहीं होगा। देखो दामिनी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब भूल जाओ, घर लौट चलो मेरे साथ, मेरे लिए। मां और बाबूजी को मैं समझा दूंगा, उनकी बात का बुरा नहीं मानते। और फिर तुम यहां अकेली मुझे अच्छा नहीं।
आपसे दूर रहकर खुश मैं भी नहीं हूं, मगर।
मगर क्या? फिर वो पागलपन, मन का बोझ, वो सच। दुख की बात तो ये है दामिनी कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार से बढ़कर और चीजें हैं।
सारी बातों का पता करके आ रहा हूं।
बोल।
आखिर उस दामिनी ने शो करके उर्मी का ऑपरेशन करवाई दिया
तो?
उर्मी अगर कोर्ट चली गई तो हम सब अंदर हो जाएंगे।
किस बात के लिए अंदर हो जाएंगे? उर्मी तो अभी चल फिर ही नहीं सकती, और वो आदमी जो कोर्ट से गया था अस्पताल में बयान लेने, उससे तो मेरे डैड ने खरीद ही लिया है। रही वो साली दामिनी की बात, उससे तो चड्डा कोर्ट में नंगा करेगा।
मेरे डैडी ने भी यही कहा, फिक्र मत करो, ये दामिनी की सच्चाई वच्चाई कोई मायने नहीं रखती। जिसके पास माल है ना माल, वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या
कुछ भी? हाँ, यानी कि हो जाए फिर एक और बार
साला रेप करेगा ये।
गुप्ता खानदान को बदनाम करने की एक गहरी साजिश है ये। इस लड़की दामिनी ने जो कहानी सुनाई उसमें सच्चाई है या नहीं, इसने क्या देखा क्या नहीं देखा, वो बाद में देखा जाएगा। मैं तो कहता हूं कि गुप्ता के घर में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। मिलॉर्ड, वो लड़की उर्मी एक बदचलन लड़की है।
ये झूठ है, उर्मी बदचलन नहीं है, वो बहुत ही शरीफ, ईमानदार और मेहनती लड़की है मिलॉर्ड।
चुप रहो।
लेकिन आप इस तरह की गलत।
खामोश, मैं बोल रहा हूं, वो लड़की एक चोर, बदचलन और बदमाश लड़की है। घटना के 7 दिन पहले ही वो चोरी करते हुए पकड़ी गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उसका बलात्कार हुआ या वो अपने दोस्तों यारों के साथ रंगरलियां मनाती रही, इसका गुप्ता खानदान से क्या वास्ता?
ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड,
उर्मी के साथ चार लड़कों ने बलात्कार किया और उसी घर में किया। चार्जशीट के साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ उसके साथ है, इसलिए मैं चाहता हूँ मिलो।
आप चाहते बहुत है सक्सेना साहब, ये अदालत है, कोई मंदिर या दरगाह नहीं जहां मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। यहां धूप बत्ती और नारियल नहीं बल्कि ठोस सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं, और मैंने ऐसे कई झूठे और बनावटी केस इसी अदालत में नंगे किए हैं, आपने भी देखा है। हां तो दामिनी जी, उस वक्त उसके बदन पर कपड़े थे या नहीं?
जज साहब, मैंने पहले ही बता दिया है कि बलात्कार हुआ, क्या क्या ये सवाल पूछना जरूरी है?
मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि उस वक्त उसके बदन पर कपड़े थे या नहीं।
जी, जब मैंने उसे पहले देखा तो उस वक्त।
जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या देखा आपने?
जब मैंने उसे पहले देखा तो वो ठीक थी, बस उसे उठा कर ले जा रहे थे, और अपने पति को जब मैं लेकर वहाँ पहुँची तो
नंगी थी। हाँ बोलिए।
उस वक्त साड़ी थी लेकिन।
जरा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ऊंचा बोलिए।
जी नहीं, साड़ी थी लेकिन बस लिपटी हुई थी।
तो वो लड़की आधी नंगी थी
हा? HMV द्वारा प्रस्तुत सिनेयुग की फिल्म दामिनी के साउंड ट्रैक का शेष भाग कैसेट नंबर 2 पर।